रुको नंबर 5 है 45 से 60, जिहाद बिल कुरान। अलम तरैला रब्बी का कई फमद्दल जिल, क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने साय को किस तरह फैला दिया है, अगर चाहता तो इसे ठहरा हुआ ही कर देता। फिर हमने आफ्ताब को इस पर दलील बनाया, फिर हमने इसे आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ खींच लिया, और वही है जिसने रात को तुम्हारे लिए पर्दा बनाया और नींद को राहत बनाई और दिन को खड़ा होने का वक्त, और वही है जो बारान रहमत यानी बारिश से पहले खुशखबरी देने वाली हवाओं को भेजता है और हम आसमान से पाक पानी बरसाते हैं। आयत नोट कीजिए, दलील है कि बारिश का पानी पाक होता है और हदीस से पता चलता है कि इसमें शिफा भी है। कभी बारिश हो ना तो साफ बर्तन ग्लास पानी रख दिया करें, वो पानी जमा करें, कई दफा जले हुए हिस्सों का इलाज है और उसमें अल्लाह की तरफ से यानी शिफा भी है, ताकि इसके जरिए से मुर्दा शहरों को जिंदा करें, और इसे हम अपनी मखलूकात में से बहुत से छुपाएं और इंसानों को पिलाते हैं, और बेशक हमने इसे इनके दरमियान तरह तरह से बयान किया ताकि वो नसीहत हासिल करें, मगर फिर भी अक्सर लोगों ने सिवाय नशुक्री के माना ही नहीं। अगर हम चाहते तो हर हर बस्ती में एक डराने वाला भेज देते, बस आप कुफार का कहना न माने और कुरान के जरिए इनसे पूरी ताकत से बड़ा जिहाद करें, और वही है जिसने दो समंदर आपस में मिला रखे हैं। इसको भी नोट कीजिएगा, ये है मीठा और मजेदार और ये है खारी और कड़वा, और इन दोनों के दरमियान एक हिजाब और एक मजबूत ओट कर दी। वो है जिसने पानी से इंसान को पैदा किया, फिर इसे नसब वाला और ससुराली रिश्तों वाला कर दिया। आगे ससुराल, डर गए, सांस रुक गया। बिलाशुबा आपका परवरदिगार हर चीज पर कादिर है। ये अल्लाह को छोड़कर इनकी इबादत करते हैं जो ना तो इन्हें कोई नफा दे सके ना कोई नुकसान पहुंचा सके, और काफिर तो है ही अपने रब के खिलाफ शैतान की मदद करने वाला। हमने तो आपको खुशखबरी और डर सुनाने वाला नबी बनाकर भेजा है। देखिए बैलेंस, डराइए भी और उम्मीदें भी दिलाइए, कभी रुलाइए कभी हंसाइए, ये नेचुरल अंदाज होता है। कोई मशीन बनकर थोड़ी हम कुरान पढ़ सुन रहे होते हैं। कह दीजिए कि मैं कुरान के पहुंचाने पर तुमसे कोई बदला नहीं चाहता, मगर जो शख्स अपने रब की तरफ राह पकड़ना चाहे, इस हमेशा जिंदा रहने वाले अल्लाह ताला पर तवक्कुल करें, इसे कभी मौत नहीं, और इसकी तारीफ के साथ पाकीजगी बयान करते रहें, वो अपने बंदों के गुनाहों से काफी खबरदार है। नो कन्फेशन इन इस्लाम। जाकर पादरी साहब को बताओ मैंने ये गुनाह किया था, फिर वो कहेंगे $500 वाली तौबा चाहिए, कितने की पार्डन लेनी। आपको तो क्रिश्चियनिटी में पार्डन बिकती है, 100 वाली, 200 वाली, 500 वाली। आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कुछ कम इल्म वाले दीनदार भी वजीफे और इस्तखारे बेचते हैं, दुआएं करवाते हैं, कहते कितने अली दुआ करानी, कई दफा इतने टुकड़े टुकड़े आ जाते हैं, जोटे पे मुर्दों को बख्शाने का सस्ता नतीजा। एक दफा मुझे किसी ने भेजा, बहुत ही दिलचस्प था, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं ऐसा देखा, तो उसमें यह था अपने प्यारों की नमाजें माफ करवाइए, तो फिर इतने रेट में इतनी, इतने में इतनी, हमसे पढ़वाइए। यानी मैंने नहीं कभी कुरान पढ़ते सुना, मैंने कुरान खानी करते हैं ताकि हमारे मुर्दों के साले सवाब हो, ये तुम्हारा कल्चर ही है ना इंडो पाक का, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना कि अपने मुर्दों की नमाजें कम कीमत में हमसे पढ़वाइए। पहले तो मुझे समझ नहीं आई कि ये कोई मजाक है कोई फेक है, लेकिन वो एडवर्टाइजमेंट था। अल्लाह अकबर कबीरा। इस हमेशा जिंदा रहने वाले को देखिए, आप देखिए कि अल्लाह अपने बंदों के गुनाहों से अगर वाकिफ है और किसी को क्यों देना, कभी अपना कोई गुनाह किसी के सामने ना खोले, और खास तौर पर शादी की रात मियाँ साहब कहते हैं मैं भी तुम्हें अपने पोल खोलता हूँ तुम भी खोलो, बच्चियों को नसीहत करते हैं, कभी अपनी पिछली जिंदगी का कोई रोमांस, कोई प्यार, कोई मैप, कोई मिस ऐप शोहर को ना बताएं, और शोहर भी ना बताएं, वो दिल में गिरा पड़ जाती है। अभी तो अच्छे दिन है ना, 4-6 महीने के बाद उसने उसी का ताना देना, अच्छा तू वो थी, वो काफी है, सिर्फ वो। आज तक किसी बंदे को आप इस काबिल ना समझें ना आगे समझें कि वो आपके दिल की बात जान लेगा, तो लिहाजा अल्लाह से बात कीजिए। कौन सा अल्लाह, क्यों करें अल्लाह से, इसलिए क्योंकि वो कादरे मुतलक है, वही है जिसने आसमान और जमीन और इसके दरमियान की सब चीजों को 6 दिन में पैदा कर दिया, फिर अर्श पर मुस्तवी हुआ, वो रहमान है। आप इसके बारे में किसी खबरदार से पूछ लीजिए, क्या पता चला कि आप अपने रब के बारे में जानने से पूछिए, जिनको पता ही नहीं वो कौन है, और जो जान रहे हैं वो कौन है, आप जैसे लोग जो रात के सेशन में बैठे होते हैं, मार्फत इलाही। लेकिन हकीकत है कि सबसे कम हम मार्फत का इल्म लेते हैं। मैं पढ़ा रही होती ना तो मैं कई दफा सोच रही होती हूँ कि कुछ सिस्टर्स कहेंगे एक तो नींद छोड़ के इनके लिए बैठे हैं, ऊपर से जितने मुश्किल लफ्ज बोल रही हैं। आरिफ बिल्ला फुलां बिल्ला मार्फत मार्फत हकीकी मार्फत फुलां। हमें तो कोई भी सीधे सीधे वजीफे बताओ, ये पढ़ो तो इतना सवाब, ये करो तो ये तो बड़ा आसान है। लेकिन रात की घड़ियों में जो रब की बात की समझ आती है वो वैसे नहीं आती। टूटे हुए तार जोड़ने का नाम है, इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं इनसे जब भी कहा गया कि रहमान को सजदा करो तो जवाब देते हैं रहमान क्या है। मक्का वाले लफ्ज रहमान से बिल्कुल गैर मानूस थे। अच्छा, क्या हम उसे सजदा करें जिसका तू हमें हुक्म दे, यानी जो आप कहें बस हम वो करते रहें। ये टोन थी उनकी मजाक वाली, और इस तबलीग ने इनकी नफरत में मजीद इजाफा कर दिया। अल्लाह अकबर, स्टबननेस जो होती है ना उसमें यही होता है कि लोग अच्छी बात को बुरा समझते हैं, वो बात की हकीकत नहीं समझते बल्कि उससे दूर भागते हैं। नहीं हम तो गए थे, पर नहीं भाई नहीं, बहुत मुश्किल बात है, हमसे नहीं बात होती। तो आइए जरा इस रुकू को जरा सा अब छानते हैं छोटे छोटे क्लिप्स की सूरत में। फुरकान 52, वजाहिद हुम बिही जिहादन कबीरा। ये है जी आज के दौर में बात को समझने का मौजू। सूरत फुरकान मक्की सूरत है और मक्का में जिहाद फर्ज नहीं हुआ था। सूरत निसा की आयत कई दफा पीछे रेफरेंस दे चुकी हूँ इसका आपको कि वकुफ वही दिया को, अभी हाथ रोके रखो। इतना प्रश्न, इतना अग्रेसिव एटीट्यूड, इतनी ज्यादा आप कह लें तकलीफें, टॉर्चर, बिलाल को रेत पे लिटाया जा रहा है और सो ऑन। मक्की दौर सभी को पता है, लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा सबर सबर, कुफ हाथ रोको। इसलिए हजरत अली हैदरे करार जैसे लोग जिन्होंने बाद में बहादुरी के जौहर दिखाए, हजरत उमर जैसे जरूरी और गैरत वाले शख्स भी मक्का में कुछ ना करते दिखे, उन आयतों के बीच में जिहादे कबीर आया। ये है उलमा के मौजू की वो आयत जिसपे वो कहते हैं कि मक्की जिंदगी में जिहादन कबीरा क्यों है, नंबर एक। दूसरा आयत पर गौर कीजिए, जाहिद हुम के बाद लफ्ज़ भी ही, इसके साथ ही क्या है इधर। तो इस पे मुत्तफिक राय है कि ये जिहाद बिल्कुरआन था। मक्का में जो हथियार इस्तेमाल किया ना वो कुरान है। 13 साल तक कुरान की तबलीग, तो कुरान की तबलीग पहले अपने जिस्म पे कोड़े खा के टॉर्चर्स करवा के तबलीग हुई, और बाद में बंदे बंदे को जाके लोगों खुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, ये है हुक्म ऐसा। आज के दौर को अगर लें, और ये हर दौर में कहेंगे, आज मैं 2023 में कह रही हूँ ना तो मेरा जाके सुनिए, 2010 में भी मैंने यही जुमले बोले होंगे, और ये अगले 20 50 60 साल बाद वाले उलमा जो आएंगे, दीनदार मुबल्लिगीन आएंगे, वो भी यही कहेंगे आज का दौर। क्योंकि हर दौर में हर तरह के लोग होते हैं। ये जो लोग कुछ कहते हैं ना अभी हम मक्की दौर से गुजर रहे हैं, कुछ कहते हैं मदनी, ये भी बेकार बात है। देखिए मक्का का वो दौर 13 साल का एक स्टार्टिंग टाइम था, बिल्कुल आप इसको यूं समझिए कि इस वक्त ये क्लास हो रही है। क्या आप में से कोई इससे अगली आयतों को सुन सकता है? यूट्यूब से, फेसबुक से, ट्विटर से, इंस्टाग्राम से, मिक्सलर से, क्या कोई कह सकता है ये जल्दी चलो ना आगे चलो? आप नहीं सुन सकते। यू हैव टू स्टे विद मी, आपको मेरे साथ सब्र करना पड़ेगा। कोई आवाजें तेज करके कम करके सुनते हैं लोग, कर सकते हैं? नहीं। हाँ जो ही ये रिकॉर्ड हो जाएगा आप शुरू से लगा लें, बीच में लगाएं, पता नहीं उस्तादों के बगैर हम कैसे सुनते हैं, मुझे तो नहीं पता। लेकिन इस वक्त आप में से कोई मुझे कह सकता है जल्दी जल्दी आगे जाएं? बस ये फर्क है। मक्की दौर तब था जब अल्लाह के नबी मौजूद थे, सहाबा थे। अब आज से लेके कियामत तक हर बंदे के लिए मक्की है कि मदनी वो खुद जानता है। आपको मैंने सूरह अनफाल की आखिरी आयतें जो थी उसमें बता दिया था कि आज के दौर के मुहाजिर, आज के दौर के अंसार, याद है? अस्साबिकुना लव्वलूना मिनल मुहाजरीना वल अंसार, वहां बताया था कि जो अभी नए नए दीन में आए होते हैं ना बेचारे, वो मुहाजिर हैं। वो तो अभी नींद छोड़कर आए हैं, अभी तो उनको बड़ा कुछ छोड़ना है गरीबों को, अभी तो उनको आदत ही नहीं, उनके तो पाँव सूजने हैं, अभी तो उनकी कमर में दुख होना है, अभी तो उनके घर वालों ने कहना तुम किधर के चली गई बेगम। और एक वो है कि जो आ चुके, जम चुके, घर वालों ने इस दीन की बरकतें देख ली, वो अंसार बने। वैसे नए लोगों को प्यार दे, नहीं नहीं आप आइए, बिस्मिल्लाह मैं आपको ले लूंगी, एक गाड़ी में चलते हैं, इकट्ठे जाते हैं, फर्क है ना? तो ये हमेशा रहेगा, हर दौर में मक्की दौर भी है और मदनी भी है। ये पहली बात याद रखें, मेरा ये मक्की है कि मदनी ये मुझे पता होना चाहिए। मेरे हालात मुवाफिक है, मेरे लिए सारी चीजें क्लैरिटी पे आ गई हैं, तो मेरा मदनी दौर है अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर मेरे अभी घर में क्या, मैं तो अभी लुढ़कते कदमों से आई हूँ और अभी मैंने 2 4 6 दिन से तो इस कुरान को सुनना शुरू किए, तो फिर ये मेरा भी मक्की है, फिर मेरे पे लिहाज कीजिए। असल मसला क्या है, आज हमारी इस उम्मत को कुरान का वो पानी नहीं मिला जो अल्लाह के नबी ने हजरत इब्राहिम की मांगी हुई दुआ, ये सारी बातें पारे के शुरू में करनी थी लेकिन मैं इंतजार में थी कि इस आयत पे करूं। अल्लाह के नबी इब्राहिम ने अल्लाह का घर बनाया, घर बन गया तो क्या कहा, रब्बना वबस फीहिम रसूलम मिनहुम, रसूल भेज उनमें क्या करे, चार काम थे, युअल्लिमुहुमुल किताब वयुज़क्कीहिम, याद है आपको आयते, बस उसको ले। अल्लाह के नबी ने 13 साल तक सहाबा को कूट कूट के ईंटें बना दिया कि कान नहुम बुनजान मरसूस बन गए। तज़किया ऐसे किया कि अंदर से सब खुरच के दिया कि गुनाहगार भी गुनाह करके घर नहीं जाता था, नबी के दर पे आके कहता था अल्लाह के नबी मुझसे जिना हो गया। दो मिसालें, एक गामदी औरत है और एक मर्द की भी कहानी है। ये तज़किया था, सेल्फ एनालिसिस, अपने आप को खुरचना। तरबियत ऐसी हो गई थी कि अल्लाह के नबी के आगे आके बोलते ही नहीं थे, और ये इंतजार करते थे कि कोई बद्दू आके बात कर ले तो उसी से हमें भी जवाब मिल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह कोर्स पूरा हुआ, 13 साल का तालीम तरबियत तज़किया का कोर्स पूरा हुआ, जमी भी ईंटे बने, कुरान का पानी पड़ता गया, पत्थर की सिलें बन गए। 13 साल में ये करना है। हमारी उम्मत का इस वक्त मसला क्या है? देखिए, जिनको बात नहीं समझ आती ना, उनका भी साथ दीजिए कि उनको भी समझ आए बात। किस वक्त इस उम्मत पे ना कुरान पढ़ा, ना युअल्लिमुहुल किताब हुआ, व ना उनका तज़किया हुआ, ना तरबियत हुई, ना उनको अकीम सलात के हुक्म पे भी अमल का पूरा मौका मिला, ना ज़कात का। अब ऐसे बंदे को आप जाकर कहते हैं कि आप जिहाद कीजिए, जो दीन का पिजर्व है, 13 साल के बाद जो भी अल्लाह ने हुक्म दिया कि छोड़ दें इनको, इन तिलों में अब कोई तेल नहीं। नबी चले गए, हम 17वें और 18वें पारे में तफसील से देख चुके हैं, गलबा इस्लाम और नफाज शरिया। आज जिहाद बिल कुरान का जो टॉपिक आ गया है, तो आप इन तीनों पारों का एक अलग शॉर्ट कोर्स बना लें, आपको दीन का मिजाज समझ आ जाएगा। जब लोग इस लेवल पे आ गए कि तलवारें पकड़ सकें, हथियार पकड़ सकें, तीर चला सकें और गुस्से पे भी काबू पा सकें, वल्लाह ही अगर मक्का में ही हथियार पकड़ा दिए जाते, आपस में मार देते एक दूसरे को, गुस्से पे काज़िमीन अल-ग़ैज़ न बने होते, तो हो सकता है बात बात में गुस्से में तीर तलवार उठा लेते। तो फिर जब हो गए, तो आप देखिए सिर्फ 1 साल भी नहीं गुजरा तो तबूक की जंग, फिर उन्होंने जो मार के दिखाए वो किसी से ढके छुपे नहीं है। तो ये बात समझिए, पहले टीम बनती है, पहले उम्मत बनी। अल्लाह के नबी ने, चाहे 100 कुछ लोग ही थे, कोई बात नहीं, थोड़े ही होते हैं, इट्स फाइन, कोई हेड काउंट थोड़ी है इस्लाम में। तो लिखिए, टीम वर्क के बगैर मुमकिन नहीं है कि लोगों को कुरान दिया जाए। इसके लिए असूल क्या है, जिसके पास जो है वो ले आए, गाड़ी है तो अपनी गाड़ी पेश कर दे, घर है तो घर ले आए, कुर्सी है तो कुर्सी ले आए, जगह है तो जगह ले आए, इल्म है तो इल्म ले आए, वक्त है तो वक्त लगा दे। इस वक्त पूरी उम्मत को एक होने की जरूरत है। लोग आपको मुसलमान होने पे ज़िबा कर रहे हैं, वो आपको हनफी शाफई और फलां फलां नामों पे और मसलकों पे नहीं करे, उनको एक पता है आपके पासपोर्ट पे नाम मुस्लिम लिखा है। आपका मेरा इस वक्त काम ये है, इस कुरान के पानी को ग्रॉस रूट तक पहुंचाएं। देखिए, दरख्त को जेन में लाइए, पानी देना हो दरख्त को तो पत्तों पे पानी डालते हैं, टहनियों को जड़ों में डालते हैं, वो जड़ में पानी जाता है, और जड़ के अंदर अल्लाह ने एक कुव्वत रखी है कि वो ऊपर पानी को सींचते सींचते, पहले तने में, तने से शाखें, शाखों से पत्ते, वो खुद देगा। ये कुरान का पानी जाएगा तो जिहाद तक दरख्त पहुंचेगा। जिहाद इस्लाम की चोटी है, इससे किसी को इनकार नहीं होना चाहिए। ये बुजदिली होगी, ये जुर्रत की कमी होगी अगर कोई ये कह दे कि चुप चुप चुप, अभी मक्की दौर है, अभी सर कुटाते हैं, अभी चुप चुप चुप, बेकार बात है, ये सिर्फ लफाजी है। वल्लाही मैं अक्सर दुआ करती हूँ, और आगे एक आयत भी आ रही है कि अल्लाह दीन के नाम पे हमें एक्टर ना बना, हम सिर्फ अपने ऊपर एक पोज देकर दीनदारी का, हम बड़े नेक हैं, खास तरीके से हम दुपट्टा लेते हैं, हम एक खास रंग के सफेद कपड़े पहनते हैं, और हमारे साथ ये हाथ में तस्बीह और अस्तगफार अस्तगफार करते हुए भी गिबते करते हैं, हम ऐसा ना कर। बी नेचुरल। दीन के पौधे पे बहार कब आएगी, जब कुरान आम होगा, ग्रॉस रूट, बच्चों पे, बड़ों पे, औरतों को, मासियों को, ड्राइवरों को, और ABCD जिस तक कुरान पहुंचा सकते हैं उनको कुरान दीजिए। आप मैं बेस्ट में बैठे हैं, क्यों गूंगे शैतान है, क्यों बात नहीं करते, जहां मौका मिले जाहे तुम भी जिहादन कबीरा। क्या आप इस मुल्क में रहते हुए तलवारें उठाकर लोगों को कहेंगे कि मुस्लिम हो जाओ, ये तो नबी ने नहीं किया, लाइक राह फिद्दीन। तो आपका मेरा काम क्या है कि अपने आप को इस्लाम का नुमाइंदा बनाकर रखें। जहां बैठे हैं पहले सोचें आप खुद के हैं, किस तरीके से, क्या कर रहे हैं आप, क्या आपकी वजह से कोई खैर फैल रही है कि शर। और आप देख लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदें भरी पड़ी हैं, रिवर्ट्स लोग हैं, इस्लाम फैल रहा है, बिल्कुल फैल रहा है, अपने लोगों का इस्लाम रिवायती होता जा रहा है। खानदानी इस्लाम है या उनका कोई ग्रोही इस्लाम है, तो वो जो न्यू मुस्लिम्स है वो रियल इस्लाम पे, जैसे मूसा के जादूगर थे। इससे ज्यादा भी क्या बात करूं। अगले लफ्ज को जरा सा गौर से देखते हैं। फुरकान 53 में इसी रुकू में हमने क्या देखा, बजाला बैनहुमा बरज़खम वहजरम महजूरा। अब ये दुनिया की कहानी है। आज दुनिया में वो जगह है ना कि जहाँ एक रंग का पानी तो दूसरा पानी, सूरत रहमान में भी आता है। इस पैगाम का मैसेज क्या है कि मुस्लिम्स को अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करनी। मोमिन कुफार के बीच में रहता है मगर काफिर नहीं होता। मोमिन झूठे लोगों के बीच में रहता होगा तो झूठा नहीं होगा। मोमिन फाजिरों के बीच में रहेगा तो फाजिर नहीं होगा। मोमिन दुनिया परस्त लोगों के बीच में रहता है लेकिन दुनिया परस्त नहीं होता। मोमिन गालियां बकने वालों के बीच में रहेगा लेकिन गालियां नहीं बकेगा। क्या कहा, डोंट लूज योर आइडेंटिटी। ये मैसेज है वेस्ट में रहने वाले मुसलमानों को मेरा, कि वाई यू आर अशेम्ड, यू फील अशेम्ड। अपने हुलिये पे, अपने रंग ढंग पे फख्र कीजिए कि आपको अल्लाह ने एक बड़ा प्यारा पैगाम दिया। उसके बाद आ गए हैं जी ससुराल भी, आप किधर है, कहाँ बिठाऊं, जल्दी करो, चाय बनाओ, बाहर से लाओ, ससुराल वाले आ गए, हाय इनको अच्छा रखना, खुश रखना, ये ना वो ना हो। नहीं, देखिए ससुराल के लफ्ज को जरा सा आज इसमें प्यार में, ये सहरा का लफ्ज है, सिहरा सूरह फुरकान 54 में। ससुराल आज के दौर में आप कह सकते हैं ऐसी नेमत है जिसे नहीं मिली वो मांगते हैं, अल्लाह शादी हो, ससुराल आए, वो फलां की अम्मा मुझे देख रही थी, वो आंटी लगता है अपने बेटे के लिए मुझे इंटरेस्टेड है। हर शादी या हर दावत में नहीं लगता वो आंटी तुम्हें क्यों घूर रही थी, हाँ लगता है तुम्हें अपने बेटे के लिए देख रहे, करते थे आप लोग क्या आपस में मजाक, और वो मामी क्या चाहती है और खाला का क्या दिल और फूफो का बेटा था ना, यानी पहले मांगते हैं और जब वो मिल जाती है तो क्या कहते हैं। किसी ने कहा कि ससुराल ऐसी नेमत है जिसे नहीं मिली वो भी पछताए और जिसको मिल गई वो भी पछताए। तो मुझे तो लगता है कि ससुराल बहुत प्यारी चीज है। आप देखिए कि जिंदगी का हर रिश्ता, आप इसको समझिए, इस पे एक लेक्चर है, अगर आप सुनना चाहें तो बच्चियों को जरूर सुनाइएगा शादी से पहले, खट्टे मीठे रिश्ते, पावर पॉइंट है ना, वो भी बड़ा प्यारा सा बना हुआ है रंग बिरंगा सा। क्या आप हमेशा सिर्फ मीठा खा सकते हैं और सिर्फ नमकीन खा सकते हैं? थोड़ा सा नमक खाने के बाद एंड पे क्या पूछते हैं, मीठा नहीं बनाया हा? तो मीठी चाट अच्छी लगती है जब तक उसमें लीमू ना डाले। तो खट्टे मीठे रिश्ते, हमें चटनी भी अच्छी लगती है, हमें मीठा भी अच्छा लगता है। तो ससुराल में अगर कभी कुछ हो भी जाए तो क्या महके में नहीं होता? माँ ने कभी कुछ नहीं कहा? जो कुछ माएं कहती हैं बेटियों को, आजकल की माओ का तो मुझे नहीं पता, जो हमारी माओ ने हमारा जीना तो बर किया हुआ था, तो ये तो शुक्र हुआ शादी हुई तो चले गए, तो हम भी अच्छे हो गए, वो भी अच्छे हो गए। लेकिन मैका नेमत है ना, तो ससुराल उससे भी बड़ी नेमत है। क्यों, अगर ससुराल ना होता तो आप कहाँ होती, कमारी होती, माँ बाप के घर में होती, अब बुधेड़ उम्र की तरफ चल पड़ी होती, फिर लोग कहते हाय इस लड़की की शादी नहीं हुई, कोई सास ना आई कि अपना बेटा देती और इसको ले जाती। आज जाकर अपनी सासों को शुक्रिया बोलना, मैं भी बोलूंगी, बोलिए थैंक यू मुझे अपनी बहू बनाने का, यहाँ ना कहना शुरू कर दीजिएगा। बिलीव मी, बहुत प्यारा रिश्ता है। और मैं अक्सर कहती हूँ सास से मोहब्बत का बस कोई वजह ना समझ लो, कहते क्यों करें मोहब्बत उनसे, इसलिए कि वो आपके शोहर की माँ है। अगर आपके शोहर आज एक MPA है, कोई सदर है, मिनिस्टर है, वजीर है, डॉक्टर है, कौन है, किसकी कोशिशों से, अगर वो हाफिज़े कुरान है तो किसने फजरों में पढ़ के उसको कुरान याद कराया? तो याद रखिए रिश्ते एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं, इनको देख के ठंडा होता है दिल। ये जो आपको आज पारे में दिए ना, घर और कुरान साथ साथ, ये बहुत सच है। मैं यहाँ बैठकर आपको इतने सुकून से नहीं पढ़ा सकती थी अगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह मस्जिद न बुलाता कुसना, अल्लाह मैंने औज़ु बिका मिन शर्र नफ्सी और हर शर से बचाऊं, अगर मेरे घर में सुकून ना होता तो मेरी आवाज़ में आपको सुकून ना दिखता। आप इससे महसूस करें कि अंदर कितना सुकून है। मेरे घर वाले अगर मेरे से खुश नहीं है तो क्या मैं अल्लाह को खुश करके आप लोगों के साथ कर सकती थी? आपने घरों का माहौल अच्छा बनाया, आप मुकाबले पे एक घर में कोई दंगा फसाद वाला बना ले, खराबी है, बेवकूफी होती है, बात कोई और होती है, बदनाम दीन होता है। वो पिछली भी बातें याद ले आएंगे, जहां भी लड़ाइयां झगड़े होते हैं वो आपका अपना कोई क्लैश होता है। तो रिश्तों को देखिए, खुश हो, पोते नवासे बच्चे सास ससुर, और सास को तो बहुत प्यार से ले क्योंकि वो तो शेयर कर रही है आपके साथ अपने बेटे को। तो लिखिए कि रिश्तों में अगर कड़वाहट है तो मिठास भी होती है। हम सबको सबसे ज्यादा मजा कहाँ आता है, फैमिली कजन्स, हम अच्छे कपड़े कहाँ पहनते हैं जब अपनों ने आना होता है, कोई गैर कहते छोड़ो गैरों में कौन इतने चमकीले कपड़े पहन के चला जाए, अच्छा दोस्त नहीं आनी ठीक है ऐसी कर लेते हैं। और आज पता है आपको कि फैमिली सेटअप ने जो मुआशरे को दिया है, सुबहान अल्लाह, आप हैरान होंगे कि वेस्ट की निस्बत ईस्ट में फैमिली सेटअप अभी स्ट्रांग है, जिसमें हम अपने मुसलमान मुल्कों को भी देख सकते हैं, वहां खुदकुशी का रेशियो कम है। करने ही नहीं देगा, बच्चों को अकेले छोड़ना ही नहीं है आपने। करने लगेगा तो बाप ने, आजा ने, उधर से मामू ने, उधर दादा ने, उधर चचा ने, और जहां खानदान नहीं है, आज आप देखिए सेल्फ हार्मिंग इज मोर पॉपुलर देन सुसाइड। बच्चे खुद को अजियत दे रहे हैं, वजह क्या है? क्योंकि उनको टाइम नहीं मिल रहा, फोकस नहीं है, अकेले हैं, अकेलापा है। यानी आज का सबसे ज्यादा एक कह सकती हूँ कि टीजिंग टॉपिक यह है कि बच्चे और बच्चियां दे आर ट्राइंग टू सुसाइड। कोई ब्लेड से खुद को काट रहा है, कोई बाइट्स कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये फैमिली बॉन्ड है, बच्चों को टाइम दीजिए। वो क्यों अकेले फील कर रहे हैं? कहते हैं ना कि लोनलीनेस इन क्राउड, सबके बीच में अकेले, तो फैमिली को टाइम देने की जरूरत है। रिश्तों में तवाजन रखिए। फिर नसब और शहर की बात है ना, नसब है खानदान फैमिली जिसको आप मैका कहते हैं, और शहर क्या है, जो आपका ससुराल है वो आपके मियाँ का है। अच्छा, इसमें सिर्फ फिर सास बहू की ना बात कीजिए, थोड़ी सी कुछ चीजें जो कॉमन, सिर्फ थॉट प्रोवोकिंग सोच के साथ आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हमारे यहाँ ससुराल के लफ्ज के साथ सिर्फ बहू आती है, और एक्सपेक्ट क्या किया जाता है कि मुन्ने के अब्बा मुझसे काम नहीं होता ना, बेटे की शादी कर दो। मतलब ये कि घर में नौकरानी आ जाए, काम करने वाली आ जाए। बहू से बाय डिफॉल्ट सोचते हैं कि एक काम करेगी, और आपका बेटा जब अपने ससुराल जाएगा तो कहते हैं बात सुनो, ये तुम क्या कर रहे थे उधर? वो अम्मा उनकी वो जरा उनकी बिजली काम नहीं कर रही ना, तो मैंने जाके हेल्प कर दी। अच्छा, आप क्या कर रहे थे? वो गटर बंद हो गया था, तो मैंने कहा मैं सास सतमा की खिदमत कर दूं। क्यों, तुम कौन हो? रनवरी दो, घर दमा दो। यानी लड़के के ऊपर भी प्रेशर उसकी माँ ही डालती है। ऐसा ना कीजिए। अगर आपका एक बेटा या लाडला या कुछ है, उसको भी कहें कि जाओ अपने ससुराल की खिदमत करो। हमारे यहाँ ये बेकार किस्म के ताने अच्छे नहीं लगते। और सास के आने पे बहुओं का हाल क्या होता है कि हमने घर का कोना कोना साफ करना है। क्यों भाई, इंस्पेक्शन हो रही है आपके घर की? देखो मेरी सासू अम्मा आ रही है। अच्छा, उनकी नजर नहीं अभी कमजोर हुई? नहीं, उनको गंद बहुत जल्दी दिखता है, उनको मट्टी दिखती है। तो सास बनिए इंस्पेक्टर नहीं, और बहू के घर वालों की तो सांसें उखड़ जाती हैं जब बेटी की सास आ रही होती है दावत में। इसीलिए फिर अक्सर लोग बुलाते ही नहीं, कहते हैं रहने दो, उन्होंने आटे नमक चावल हर चीज में नक्स निकाल कर जाना है। मैं एक मिसाल के बाद इस चीज को वाइंड अप करती हूँ। कश्ती कभी देखी आपने? कश्तियों में बहुत दफा बैठे होंगे, बीच मिडल के अंदर वो बंदा बैठता है जिसको ना खुदा कहते हैं ना, चप्पू चलाता है। अब वो इधर से चप्पू चलाएगा, आधी कश्ती इधर है आधी इधर है। तो शौहर और बीवी यानी एक कपल न्यूली वेड है, तो उसको ज्यादा ही डिस्कस कर लीजिए। उनका हाल एक कश्ती में बैठे हुए ना खुदा की तरह, यानी कश्ती चलाने वाले की तरह का होना चाहिए कि बीच में बैठे, एक तरफ मैके वाले बैठे हैं तो एक तरफ ससुराल वाले। ये लड़की के लिए भी, लड़के के लिए भी है, और चप्पू चलते जाएंगे, कश्ती चलती जाएगी। जिंदगी की गाड़ी को चलाने का यही असूल है, एक तरफ कोई भी झुकेगा। बहू अगर ससुराल का ख्याल ना करे और हर वक्त मैका 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 कहती रहे, मेरे अब्बा के घर जाए, मेरी अम्मी के घर जाए, तो भी कश्ती उलट जाएगी। और अगर लड़का इससे ऑपोजिट करे तो भी ऐसा होगा। तो लिहाजा बीवी के मैके वालों को खौफजदा ना करें। अब इसमें दामाद को भी देख लीजिए, इस पे एक लेक्चर है, पूरे टॉपिक को सिर्फ उसमें डिस्कस किया था। तो खुशियां बांटिए, ये नहीं कि दुख दें, अपनाइयत रखिए, गैर भी अपने हो जाएंगे। हम गैरों में शादी नहीं करते, अपनों में करते हैं। और एक बात सिर्फ आपको एक प्यार मोहब्बत से कहूंगी, खास तौर पे अगर आपके दिमाग में ये रिसेंटमेंट है ना कि मैं लड़के की माँ हूँ और मैं लड़का हूँ, यानी मैं दामाद हूँ भाई, आपको नहीं पता मैं क्या कर सकता हूँ, तो उनको वो दुआ याद करा दें, अल्लाहुम्माखिनी मिस्कीना व मितनी मिस्कीनन वख्शुरनी फी जुमरतिल मसाकीन यौमल क़ियामा, कि अल्लाह मुझे मिस्कीनी की हालत में रख, मिस्कीनी की हालत में वफात दे, और क्यामत के रोज मुझे मस्कीनों के जुमरे में उठा। तिर्मिज़ी की यह रिवायत है 2352। मतलब यह है कि आजजी लाइए, अपने अंदर से बड़ाई का निकाल दो कि मैं बेटे की माँ हूं और मैं वो हूँ। अब बात हुई घर और कुरान की, और जाहिद हूँ भी जिहादन कबीरा, तो आपके लिए इसमें ये है जिहादन कबीरा। आप सब यहाँ आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बुलाया, आपने लबैक कहा। अब अगला कोर्स आपके सामने, सबीलुल जन्ना के नाम पे। हमारे इस कोर्स का थीम ये होता है घर और कुरान साथ साथ, फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। तो मैं आप सबको प्यार से दावत दूंगी, उसको ज्वाइन करें। जब तक हम कुरान के लिए घरों से निकलते नहीं है ना, हौसला ही नहीं होता। जाहिद तुम भी जिहादन कबीरा। तो बहरहाल ये हमारे लिए मोहब्बत भरा पैगाम था। फेथ इन एक्शन लीजिए, इस रुकू से फितरत के मुताबिक जिंदगी गुजार कर अल्लाह तआला की इताअत करनी है। अपनी तौफीक के मुताबिक कुरान के जरिए जिहाद करना है। आज सबसे बड़े जिहाद कुरान की तालीम और तरवीज में अपना हिस्सा डालना है। बोलिए इंशाल्लाह। अपने रिश्तों में ऊंच नीच को नजरअंदाज करके इनको निभाना है, और अल्लाह सबसे पहले मुझे इसकी तौफीक दे और मेरे से ज्यादा आप सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। आगे जी रुकू नंबर 6, अब सूरत का एंड है। यहाँ से इबादुर्रहमान की सिफात शुरू हो रही है, 61 से 77। तबारक अल्लसी जाल फिस समाई बुरूजा, बाबरकत है वो जिसने आसमान में बुर्ज बनाए और इसमें आफताब बनाए और मुनव्वर महताब भी, और इसी ने रात और दिन को एक दूसरे के पीछे आने जाने वाला बनाया। इस शख्स की नसीहत के लिए जो नसीहत हासिल करने या शुक्रगुजारी करने का इरादा रखता हो। रहमान के बंदे यानी सच्चे बंदे, जैसे आप कहते हैं ना, ये मेरा बेटा है, इसका ये नहीं मतलब कि दूसरे नहीं है, ये मेरी अच्छी बच्ची है, ये मुराद है। यानी है तो सारे अल्लाह के बंदे, लेकिन अच्छे बंदे कौन है आप गिनती जाइए जरा अपने ऊपर लेकर, 1 2 3 करके देखिएगा इस पूरे रुकू में आपको कितनी करेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं। ये पैदा कीजिए, जिहाद खुद ही हो जाएगा। कुरान से शुरू करके तलवार के जिहाद तक लाने वाले ये वसफ हैं, ये अपनी औलादों की, पोतों की, नवासों की, और इसके अलावा इर्द गिर्द जो भी हैं उनकी तरबियत में ये रंग लाइए। और वो क्या है, नंबर 1, जो जमीन पर मसलहत के साथ चलते हैं और जब बेइल्म लोग इनसे बातें करने लगते हैं तो वो कह देते हैं कि सलाम है, और जब अपने रब के सामने सजदे और क्याम करते बराते गुजारते हैं, और जो ये दुआ करते हैं, हमारे परवरदिगार हमसे दोजख का अजाब परे ही रखना क्योंकि इसका अजाब तो चिमट जाने वाला है। आमीन। आप साथ साथ आमीन बोलिए, बहुत प्यारी दुआएं इस रुकू में। बेशक वो ठहरने और रहने के लिहाज से बदतरीन जगह है। आइए मांगते हैं मिलके ये दुआ। रब्बना सरिफन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा काना गरामा इन्नहा साअत मुस्तकर्रम व मुकामा। और जो खर्च करते वक्त भी इसराफ करते हैं ना बखीली, बल्कि इन दोनों के दरमियान मोतदिल तरीके से खर्च करते हैं यानी बैलेंस्ड, और अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद को नहीं पुकारते, और किसी ऐसे शख्स को जिसे कत्ल करना अल्लाह तआला ने मना कर दिया हो वो सिवाय हक के कत्ल नहीं करते, ना वो जिना के मुर्तकिब होते हैं, और जो कोई ये काम करे वो अपने ऊपर सख्त बबाल लाएगा और इसे कयामत के दिन दोहरा अजाब दिया जाएगा, और वो जिल्लत और ख्वारी के साथ हमेशा इसी में रहेगा, सिवाय इन लोगों के जो तौबा करे। तौबा के मौजू पे बेहतरीन आयते हैं, यहाँ सुनिएगा। सिवाय इन लोगों के जो तौबा करें और ईमान लाएं और नेक काम करें, ऐसे लोगों के गुनाहों को अल्लाह ताला नेकियों में बदल देता है, यानी ऐसे गुनाहों को अल्लाह नेकियों से बदल देता है। इस जुमले को हाईलाइट कर लें। अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबानी करने वाला है, और जो शख्स तौबा करे और नेक अमल करे वो तो हकीकतन अल्लाह की तरफ सच्चा रजू करता है, और जो लोग झूठी गवाही नहीं देते और जब किसी लख चीज पर इनका गुजर होता है तो शराफत से गुजर जाते हैं, यानी वहां बैठ नहीं जाते, उस गलत महफिल की रौनक नहीं बनते, और जब इनके रब के कलाम की आयतें सुनाई जाती हैं तो अंधे बहरे होकर इन पर नहीं गिरते, और वो ये दुआ करते हैं जो हम सब भी करेंगे। सोचिए अपने शोहरों को, बच्चों को, पोतों, नवासों, बच्चियों, बेटियों, सबको सोचकर इस दुआ को मांगिए। ए हमारे रब, तू हमें हमारी बीवियों और शोहरों मुराद है और औलाद से आंखों की ठंडक अता फरमा, और हमें परहेजगारों का इमाम बना। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रत आयुनिन व जअलना लिलमुत्तकीना इमामा। यही वो लोग हैं जिन्हें इनके सब्र के बदले जन्नत के बुलंदो बाला खाने दिए जाएंगे, जहां इन्हें दुआ सलाम पहुंचाया जाएगा, इसमें ये हमेशा रहेंगे। वो बहुत ही अच्छी जगह और उम्दा मुकाम है। कह दीजिए अगर तुम्हारी दुआ इल्तजा यानी पुकारना ना होता तो मेरा रब तुम्हारी मुतलक परवाह ना करता, यानी अगर तुम दुआएं करना छोड़ दोगे तो अल्लाह तुम्हारा ख्याल रखना छोड़ देगा। तुम तो जुटला चुके हो, बन करीब इसकी सजा तुम्हें चिमट जाने वाली होगी। खूबसूरत रुकू है, एक आयत ईमान से मुतल्लिक, 74 फुरकान। इल्ला मन ताबा व आमन व अमिला सालेहन। नोट कीजिएगा, तौबा के दर्जे, तौबा फिर ईमान यानी दोबारा रिवाइवल ऑफ फेथ, और फिर अमिला सालेहन फ्यूचर में वो गुनाह नहीं करना। फौलाइक युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात। दुनिया में कोई स्कूल, कोई उस्ताद इस तरह की मार्किंग नहीं दिखा सकता जो अल्लाह तआला ने इन आयात में दिखा दी। और वो क्या है, पिछली जिंदगी के गुनाह ना सिर्फ के मिटाए जाते हैं बल्कि उनको बाद में नेकियों में बदल दिया जाता है। आपने कभी अपने इम्तिहान के पेपर को जो आप दे चुके उसमें आपसे एक गलती हो गई, बाद में जाके टीचर से कहें कि सॉरी मैंने गलती से वो जुमला लिख दिया, तो क्या वो मिटा देते हैं? और फिर बाद में मिटाने के बाद वो जो -1 हुआ तो उसको +1 करते हैं? अल्लाह ये करता है। लिखिए, दुनिया का इम्तिहान तो मुश्किल है बट मार्किंग स्टाइल वेरी लीनियट है। खालिस तौबा से हर गुनाह माफ हो सकता है। दूसरी बात देखिए, लफ्ज़ इबाद आया। अब्द का लफ्ज़ वाहिद होता है जो हम या का नाबुदू में पढ़ते हैं, इससे दो जमे बनती हैं, एक जमे सालिम होती है और एक मुकसर होती है, आपने सुना ही होगा। एक होती है अबीद, कुरान ने ये भी कहा है वन अल्लाह लैसा बिज़ल्लाम लिल अबीद, अल्लाह अपने किसी बंदे पे जुल्म नहीं करता। ये होती है आकिल और गैर आकिल, पहाड़ों पे, पत्थरों पे, जानवरों पे, फरिश्तों पे, इंसानों पे अल्लाह जुल्म नहीं करता। यहाँ लफ्ज़ अबीद नहीं आया, इबाद आया है, क्योंकि ये बात आकिल लफ्ज के लिए आता है। यानी यहाँ से ये खूबसूरत सेंस है, जिसको समझ आ गई वो एंजॉय करेगा। तो इबाद और रहमान का किरदार सुनकर क्या जहन में आता है? हम्बल, डाउन टू अर्थ। उनके मुंह से बातें भी सलामती की निकलती है, ताने नहीं देते, इल्जाम नहीं देते, जख्मों पे नमक छिड़कने वाले नहीं होते, इनकिसारी और बुर्दबारी वाले होते हैं। आप पूरे किरदार को जमा करें ना, इनकिसार। अल्लाह सारी सासों को इबाद रहमान वाली आजजी दे दें, वो एक्स्ट्रा हक ना मांग रही हो बहू और बहू के मैके से। अल्लाह ऐसे दामादों को भी इबाद रहमान बना दे जो रोब डालते हैं अपने ससुराल पे कि उनको नहीं पता मैं क्या कर सकता हूँ। फिर तहज्जुद पढ़ने वाले, अल्लाह का खौफ रखने वाले, फजूल खर्ची और बखीली से बचने वाले, शिर्क से बचने वाले, जिना से दूर, नाहक कत्ल नहीं करते, तौबा करते हैं, झूठ छोड़ देते हैं, बदसलूकी करने वाले से दरगुजर करते हैं, और सबसे बड़ी बात के हक की दावत को कबूल करते हैं। और वाइजा खातबहुमुल जाहिलूना कालू सलामा। सलामा कौन होता है वो लफ्ज? असलम तुस्लिम, तुम मुझसे सलामत, मैं तुमसे पीसफुल। दिल जोड़ने वाले, ताने नहीं देते, उलझाते नहीं, मामलों को सुलझाते, इजी गोइंग। मैं तो सलामन का एक ही लफ्ज लिख दू ना कि दे आर सो इजी गोइंग। बाल की खाल नहीं निकालते, नहीं तुम्हारा ये मतलब था, तुमने ये कहा, तुमने मेरे बारे में ये बोला, मुझे सब पता है। बेकार बातें, वैसे नहीं वो नहीं। और खास तौर पर बाज माए, अब बच्चा बीमार, बीमार हुआ स्कूल से है, रंग लाल है, बुखार हो गया, उसको क्या चाहिए? उसको माँ की वॉर्मथ चाहिए। उसको डिस्प्रीन देने से पहले गले से लगाइए, आए मेरे बच्चे तुझे बुखार हो गया। हम कहते हैं और स्वेटर नहीं पहनो, बगैर जैकेट के जाओ, और वो देखा ठंडा पानी पियो, खांसी तो होनी थी। अब वो गरीब को बुखार से ज्यादा दर्द हो रही है या माँ के जुमलों से सलामती वाली माए बने? अपनी आवाज, अपनी जुबान के अंदर से थ्रिल खत्म कर दें, घर का माहौल आधा वैसे ही ठीक हो जाएगा। अल्ली रब्बी सुज्जदम व क़ियामा, रात अल्लाह के आगे सजदो रुकू में, क्योंकि रात की इबादत से तीन किस्म की कुव्वत मिलती है। कुव्वत गजब पे कब्जा, यानी आप गुस्से पे काबू पा लेंगे, कुव्वत अकल आपके हाथ में आ जाएगी, और शहवत पे काबू आएगा। दूसरे लफ्जों में कह लें कि रातों को रब के सामने झुकना इमोशनल कंट्रोल का एक जरिया है। अल्लाह करे कि हम रातों का कुछ हिस्सा अल्लाह के आगे रमजान के बाद में भी खड़े हो जाएं। युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआति हसनात, दुनिया में से भी, और अमाल नामे के गुनाहों को भी अल्लाह नेकियों में बदल देगा। और जो खूबसूरत बात थी, रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना वली, तो कुर्रतुल आइन की बात हुई, आंखों की ठंडक औलाद कैसे बनती है? इसकी बड़ी प्यारी लॉजिक दी हमारे उलमा ने कि जब कोई चीज गीली होती है तो ठंडी हो जाती है, पसीना आता है तो ठंडा होता है ना। तो कहते हैं कि औलाद के लिए ये दुआ करना कि इनको हमारी आंखों की ठंडक बना, ये क्या है कि अल्लाह हमारे शौहर और हमारी औलादें नेकियों में हमसे आगे बढ़ बढ़ कर काम करें कि उनको तेरे दीन के रास्ते में भागता देखकर खुशी से हमारी आंखें गीली हो जाएं और वो ठंडी हो जाएं। आप सबको दुआ दूंगी कि अल्लाह आपकी औलादों को नेकियों में आप सबसे भी आगे कर दे। अल्लाह करे कि हमारी ये दुआएं कबूल हो जाएं। फिर आप देखिए, लिल मुत्तकीन इमामा, मुत्तकियों का इमाम बनाए। हदीस की वो बात याद रखिए कि नमाज पढ़ाने वाले के साथ जो दो लोग हो ना, उनको कुरान ज्यादा आना चाहिए। अल्लाह ना करे इमाम को कुछ हो जाए या उसको कोई प्रॉब्लम हो, वजू टूट जाए, तो वो निकलेगा तो दूसरे दो लोग आगे आ जाएंगे। आपके इर्द गिर्द के लोग आपकी झूठी तारीफें करने वाले नहीं होने चाहिए, चापलूसियों वाले नहीं होने चाहिए, और बुद्धू और बेवकूफ नहीं होने चाहिए कि आप जो कह दें वो यस कहते रहे। लिखिए, किसी लीडर की खुशकिस्मती है कि इसके गिर्द इसलाह करने वाले लोग मौजूद हों, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो इस पे बहुत खुश होती हूँ। मुझे वो लोग ज्यादा अच्छे लगते हैं जो इनिशिएटिव होते हैं और जो आपकी भी गलती को पॉइंट आउट करते हैं। जो मेरे सर पे खड़ा रहे, मुझे वो ज्यादा अच्छा लगता है। सिर्फ ये कि सर पे खड़ा होने का तरीका क्या है, याद रखिए, अगर आपको ग्रो करना है ना, तो आपको अपने आप को एक अदालत में पेश करना होगा कि आप मेरी गलतियों को भी टोकें। हजरत उमर ने अपने इर्द गिर्द शूरा रखी हुई थी, कहते थे मेरा वो फैसला जो कुरान सुन्नत का होगा उसको मानना, और जिधर मैं टेढ़ा होने लगा तो मुझे सीधा कर देना। आज ये असूल लाइए, पूरे मुल्क ठीक हो जाएंगे, मस्जिदें ठीक हो जाएंगी, इंस्टीट्यूट ठीक हो जाएंगे, और जहां आप वन मैन शो बन के कहते खबरदार मेरी मस्जिद, मेरा इदारा, मेरा इंस्टीट्यूट, मेरी जमात, मैं बड़ा, बोल नहीं सकते लोग। एक हुक्मरानों के आगे आवाम नहीं बोल सकती कि हमारा टैक्स किधर गया, और एक दीनी मजहबी लोगों के आगे नहीं लोग बोल सकते कि ये दिया था तो ये किधर गया, ये कहाँ गया। शक नहीं करना चाहिए, बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन खुद को आपको कम अज कम उधर पेश करना चाहिए। यदि आप दूसरे एज पे हैं तो आप अल्लाह पे डाल दें मामला, किसी दीनदार पे शक ना करें, वरना आपका अपना दीन मशकूक हो जाएगा। लेकिन दीनदारों को अपने आप को बहुत क्रिस्टल क्लियर रखकर पेश करना चाहिए कि आओ हमें देख लो। हजरत उमर फारूक के दौर की बीसियों मिसालें हैं। एक मौका है, उमर फारूक के पास कुछ कपड़ा आया माले गनीमत में, सबको टुकड़े करके बांट दिए, जो कमीजें बना लो। कुछ दिन के बाद हजरत उमर के तन पे एक कमीज थी। किसी ने खड़े होकर महफिल में पूछ लिया कि उमर, जो कपड़ा हमें मिला था उसमें हमारी कमीज तो नहीं बनी, आपकी कैसे बन गई? का इसका जवाब मेरा वो बेटा देगा जो बैठा हुआ है। फिर इब्ने उमर उठे और कहने लगे, जिस तरह तुम सबको एक एक टुकड़ा मिला, मुझे भी मिला था और मेरे बाप को भी मिला था। मैंने अपना टुकड़ा बाप को दिया, वो दोनों को जोड़ के ये कुर्ता पहना। आपको क्या पता दीनदारों के पास माल कहाँ से आता है और किधर जाता है? तो अपना ईमान खतरे में कभी ना डालिए दीन के नाम पे। लेकिन ये याद रखिए कि आपके इर्द गिर्द लोग बाहोश होने चाहिए। फेथ इन एक्शन क्या है? हर रोज रात से दिन निकलता है, दिन से रात निकलता है, इससे अल्लाह को पहचानिए उसकी क्या कुदरत है। हमारी चाल हमारा आईना है, अपनी चाल को तकब्बुर से पाक और पुरवकार बनाना है। अगर कोई बहस करने के मूड में हो तो नरमी से जवाब देकर उठ जाना है। हमारा चाल चली करेक्टर सर्टिफिकेट है एक मोमिन का। और अगर कोई बहस करने के मूड में हो तो नरमी से जवाब देकर उठ जाए, भाई क्यों उलझते हो, क्यों झगड़ते हो, खामोशी रखिए। फिर फेथ इन एक्शन, रातों के क्याम से अल्लाह का कुर्ब पाना, और दिन के इंतजार से लोगों को कुरान से जोड़ना है, और जाहिद हम भी जिहादन कबीरा पे अमल करना है। बखीली और फजूल खर्ची नहीं करनी। इसमें भी मैं जरा सा खवातीन को थोड़ा सा गाइड करना चाहती हूँ कि खर्च करते वक्त जरा सा देख लें कि यही चीज इससे जरा सी कम कीमत पे भी तो बनी सकती थी। पैसे हैं आपके पास, लेकिन चलिए आप एक में दो बना लें ताकि बाद में दो लोगों को दें तो उनको फायदा हो, और इसी तरह की चीजें। यानी खर्च पे भी जरा सा तवज्जो फरमाइए। इस पे हमने सूरत बनी इसराइल में काफी बात की थी, ये भी बता दूं। खर्च करते हुए दरमियानी राह रखिए, हर किस्म के खुफिया और जाहरी शिर्क से बचना है, उसको पहचानना है, और अल्लाह से उनके लिए ईमान और नेकी की दुआएं करनी है जो आपके इर्द गिर्द हैं। जो चीज अपनी आंख से ना देखी हो वो आगे बयान नहीं करनी, इसको लिख लें। हर वो वीडियो जिसमें किसी की किरदार कुशी, उसको डिलीट करते हैं, दैट्स इट। नेकियों में अपने शरीके सफर और औलाद को शरीक करना है, अल्लाह उनको हमारे साथ एक ही कश्ती में बिठा दे जो दीन की कश्ती है। तो खूबसूरत पैगाम पे सरपुरी हुई।